जय राधा माधवा कुंज बिहारी। सब लोग बोलिए जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी।
गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी।
गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन वंजना। यशोदानंदन ब्रज जन वंजना। जमुना तीरावन चारी। जमुना तीरावन चारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए। आप बरसाने में बैठे हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। जब तक हृदय से नहीं पुकारेंगे तब तक वो नहीं सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। करो
हरे हरे हरे
हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे।
राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे।
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे
राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर
जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा
प्रभु पदा
जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव
श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री श्री गौरनिथाय की श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री लाडली लाल जी की श्री बरसाना धाम की श्री नंद राम धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री प्रभुपाद की हिताई गौर कृपानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण। तो आज के इस माघ पूर्णिमा के पवित्र दिवस में 30 जनवरी 2010 साल के दिवस में हम सब श्री बरसाना धाम में बैठे हैं। सबसे पहले हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी का स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधा श्याम सुंदर जी बड़ी कृपा से नर्तकी माता जी की दया से हमारे साथ में यात्रा कर रहे हैं बरसाने की, और साथ साथ प्रभुपाद जी भी विराजमान हैं। कल उनका विग्रह भी यहाँ पर आगमन होगा उनका, और साथ साथ हम प्रभुपाद जी की शिष्या नर्तकी माता जी और सुखावा माता जी दोनों का भी स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि के रूप में आप दोनों यहाँ विराजमान हैं, और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायी है। योर प्रेजेंस इज वेरी इंस्पायरिंग। बोथ ऑफ यू आर प्रेजेंट हियर ऑन बिहाफ ऑफ श्री प्रभुपाद टू ब्लेस अस, एंड विथ योर परमिशन आई विल स्पीक फ्यू वर्ड्स। मदन मोहन जी आपकी आज्ञा से मैं कुछ कहूँगा दो शब्द। हरे कृष्णा। तो आज हमारे 2010 के दिव्य चक्षु यज्ञ नेत्र चिकित्सा शिविर का यज्ञ का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। उसके पहले थोड़ी सी मैं आपको जो बैकग्राउंड है बता दूंगा कि अभी ब्रज में कुंभ मेला चल रहा है। वैसे कुंभ मेला तो हरिद्वार, नासिक और इलाहाबाद ऐसी जगह पर होता है, लेकिन ब्रज के कुंभ का भी थोड़ा सा रहस्य ऐसा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान की इच्छा से इसमें से अमृत का निर्माण हुआ था, तो वो अमृत का कलश तो है वो गरुड़ जी लेकर चले गए और आकाश में उड़कर पहले ब्रज में आए। और ब्रज में जहाँ पर बहुत युगों के बाद में ठाकुर जी ने कालिया मर्दन किया, आप जानते हैं ना, जहाँ पर जमुना किनारे में कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर ठाकुर जी ने छलांग लगाई जमुना जी में और कालिया को दमन किया। ऐसा कहते हैं कि वो वृक्ष जो है वो जीवित रहा इसी कारण से क्योंकि इस आगे वाली आने वाली लीलाओं को देखकर। हरे कृष्णा, तो अमृत की कुछ बूंद इस वृक्ष पर। हरे कृष्णा, सबका ध्यान यहां पर है, डोंट गेट डिस्टर्ब। तो अमृत के कुछ बूंदे जो हैं वो गरुड़ जी ने इस वृक्ष पर डाली थी और उसके आगे फिर जब वो बढ़े तो फिर कुछ बूंदे इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पे, कुछ नासिक में, कुछ हरिद्वार में ऐसे आगे डाली गई। तो जब त्रिवेणी संगम पे कुंभ लगता है तो ब्रज में भी कुंभ लगता है जमुना किनारे। और संतगण यहाँ पर एकत्र होते हैं और संतगणों की, वैष्णवों की ऐसी भावना है कि वो उस कुंभ में स्नान करने के लिए पहले यहाँ पर आकर दंडवत प्रणाम करते हैं, जमुना जी की कृपा लेते हैं स्नान करके और फिर आगे कुंभ के लिए जाते हैं। सही बात है मदन मोहन जी? तो इसी उपलक्ष्य में ब्रज में ये कुंभ लगता है हर 12 साल में एक बार। तो कुंभ में हजारों संत वहां पर इकट्ठे हैं जमुना जी के किनारे में और बहुत बड़ा मेला है, संतों का संग चल रहा है वहां पर। और आज का दिन माघ पूर्णिमा का दिन है। कुछ स्नान पर्व होते हैं कुंभ के उपलक्ष्य में। एक होता है वसंत पंचमी का दिन जिसमें महास्नान होता है, आरंभ होता है उस दिन। दूसरा है भैमी एकादशी 26 जनवरी को थी, वो भी एक माघ स्नान का मेला है। फिर आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा बहुत पवित्र दिन है हर दृष्टि से, पूरा माघ महीना पवित्र माना गया बहुत। इसमें ठंडे पानी से स्नान करने से कई पाप नष्ट हो जाते, आपके लिए उपलब्ध है, आप इसको लाभ ले सकते हैं। हाँ, माघ महीने में आप वृंदावन में बरसाने में बैठे हो, ठंडे पानी से आप भोर के समय स्नान करोगे तो आपको बहुत लाभ होगा, राधा रानी की कृपा आप पर बरसेगी ठंडे पानी के रूप में। वो एक है। और माघ पूर्णिमा जो है वो इतना पवित्र दिन है, मुझे याद है कि कुछ 4 साल पहले यहाँ पर हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ महाराज उपस्थित थे इस यज्ञ में, तो उन्होंने कहा था कि माघ पूर्णिमा का दिन जो भी कार्य आप करते हैं, शुरुआत करते हैं, वो कार्य सफल यशस्वी हो जाता है। इसलिए हर साल हमने कोशिश किया था कि माघ पूर्णिमा के दिन इस कैंप का यज्ञ किया जाए, लेकिन हर साल वो डेट मिलता नहीं है। इस साल ये योग आ गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन हम यज्ञ को कर रहे हैं और ब्रजवासियों को हृदय से हम नेत्रदान करना चाहते हैं, इस उपलक्ष्य में इस यज्ञ को कर रहे हैं। आज का भी यज्ञ इसी भावना से हम करते हैं कि हम लोग ये नहीं चाहते कि केवल भौतिक दृष्टि से किसी को दृष्टि प्राप्त करें, हम चाहते हैं कि हृदय से ब्रजवासियों की सेवा की जाए, क्योंकि ब्रजवासीगण तो दृष्टि प्राप्त होने के पश्चात कोई टेलीविजन या कोई पिक्चर नहीं देखते, वो तो सीधे शिव जी के मंदिर, कृष्ण बलराम के मंदिर भागते हैं। अब जिसमें व्यवधान हो गया है भागवत जी की पठन में, वो खोल कर भागवत जी पढ़ने लगते हैं, अपने आप को संभालते हैं। इसलिए ब्रजवासियों को नेत्रदान देना और किसी दुनिया के किसी और लोगों को नेत्रदान देना में जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पर हम उनको नेत्रदान करने का प्रयत्न में अपने आप की जो खोई हुई दृष्टि है उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी दिव्य दृष्टि को खो बैठे हैं, तो एक्चुअली ये ऑपरेशन है उनका, लेकिन सच में अगर कहा जाए तो हम अपना ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अपने जो खोई हुई दृष्टि है, हमारे जो नेत्रों के सामने जो माया का पर्दा गिरा हुआ है कैटरैक्ट की तरह, मोतीबिंद की तरह, उसको हम नष्ट करने के लिए उनकी सेवा हेतु यहाँ पर आते हैं, ताकि हमारे भी नज़र दृष्टि जो है वो खुल जाए और ठाकुर जी का साक्षात्कार, दर्शन, अनुभूति हमको भी प्राप्त हो जाए। आज का दिन का और भी महत्व यह है जो मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा, समय बहुत कम है। वो ये है कि आज नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का जन्मदिवस भी है। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के बड़े रत्न समान आचार्य हैं, एक चमकते हुए सितारे हैं इस संप्रदाय के। और ये चैतन्य महाप्रभु के जो कालावधि था उसके कुछ ही देर के बाद में उनका आविर्भाव हुआ है। आप सब कह सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पीढ़ी जो है उसके ये प्रमुख आचार्य हैं। तो उनका जन्म आज के दिन हुआ था। इनका मंदिर भी ब्रज में दो जगह पर है। वृंदावन में एक राधा ब्रजमोहन मंदिर है जहाँ पर उद्धव गोपी मिलन स्थली है, उसके सामने ही। और एक मंदिर गोकुलानंद मंदिर है जहाँ पर उनके द्वारा पूजित गौरांग महाप्रभु की मूर्ति भी विराजमान है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु अपनी संकीर्तन की यात्रा में जा रहे थे, थोड़ा सा पीछे कोई देखेंगे जरा आवाज सके, तो बांग्लादेश में अभी भी वो गांव है, उसका नाम है खेतुरी ग्राम। वो खेतुरी ग्राम में एक नदी है, पद्मा नदी। और उस पद्मा नदी के किनारे में जब आए तो एकदम जोर से नरोत्तम 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 करके पुकारने लगे। जितने भक्त उनके संग में थे उन्होंने कभी इस भक्त का नाम नहीं सुना था, लेकिन अगर महाप्रभु जी भाव विभोर होकर किसको पुकार रहे हैं तो निश्चित है कि ये कोई महान भक्त होगा। सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे, कौन नरोत्तम, कौन है नरोत्तम, कौन है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु भाव में थे, वो एकदम उनको पुकार रहे थे। कुछ देर बाद वो जो भाव उनका शांत होता है तो वो कहते हैं कि मेरा परम भक्त जो है नरोत्तम कुछ ही समय के बाद में इस ग्राम में जन्म लेगा। इस तरह से वो लोगों को मेरा परम भक्त है। और श्री चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी में स्नान करते हैं। जैसे ही पद्मा नदी में स्नान करते हैं तो अपने हृदय का जो राधा भाव को लेकर तो आए थे ना, वो राधा जी का भाव लेकर कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं, तो उनका जो राधा भाव के ऊपर, जो राधा भाव के आधार पर जो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम है, वो सारा कृष्ण प्रेम वो पद्मा नदी के जल में विराजमान कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं। उसी समय पद्मा देवी जो नदी देवी स्वरूप है प्रकट हो जाती है और महाप्रभु चैतन्य उनको आदेश देते हैं, जब मेरे भक्त नरोत्तम इस नदी में स्नान करने यथावकाश आएंगे तब मैंने आपके जल में जो समर्पित किया है मेरा कृष्ण प्रेम, वो उसके हृदय में आपको समर्पित करना है। यू प्लीज ट्रांसफर द लव दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन यू इन हिज हार्ट। तो यथावकाश कायस्थ जाति में राजा के कुल में नरोत्तम का जन्म होता है तो कायस्थ, मतलब उनको थोड़ा सा निचला मानते हैं, ओबीसी ऐसे मानते हैं कायस्थों को। लेकिन उनके पिताजी जो थे उनका नाम था दत्त, सरनेम दत्त था उनका, वो राजा थे उस खेतुरी ग्राम के। तो ये पहले पुत्र हैं उनके, राजपुत्र, मतलब आगे जाकर राजा बनने का अधिकार इनका ही है, युवराज थे वो। लेकिन इनको जन्म से ही बिल्कुल संसार में, प्रपंच में, राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि लेते नहीं है। कुछ अगर ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे, नो इंटरेस्ट, हमेशा ऐसे नदी किनारे भटकते हैं, यहाँ वहाँ भगवान का नाम ले रहे, कभी भोजन करेंगे कभी नहीं करेंगे, ऐसे उनका तेवर थे, उनके लक्षण थे। यथावकाश वो नदी किनारे पहुँचते, थोड़े बड़े होने के बाद में वो नदी में स्नान करते हैं। नदी में स्नान करते ही पद्मा देवी स्वयं प्रकट होती है और उनके हृदय में भगवान का प्रेम जो है वो स्थापित कर देते हैं। जैसे ही उनके हृदय में ये आविर्भाव होता है प्रेम का, वह एकदम पागल से हो जाते हैं और नदी किनारे बेहोश होकर गिर जाते हैं और कई दिन तक वहां पर बेहोश पड़े रहते हैं। अभी आप सोच सकते हैं, कोई बालक घर से गया हुआ है घूमने के लिए, 3 दिन तक लौटा नहीं है, सब जगह ढूंढते हैं, तो उनको नदी किनारे ये बेहोश अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो फिर वो होश में आते हैं और उसके बाद में उनको संसार में जो भी थोड़ा बहुत था वो संसार में बिल्कुल रुचि समाप्त हो गई उनकी। पिता माता बहुत व्याकुल हो गए, बड़े हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु उसी समय जब भी उनके आविर्भाव हुआ उनके हृदय में प्रेम का, तो महाप्रभु जी उनको स्वयं प्रकट होकर आलिंगन देते हैं। अब ये समझने की बात यह है कि उस समय महाप्रभु का अंतर्धान हो चुका था, महाप्रभु की लीला खत्म करके वो अपने सुधाम लौट गए थे। लेकिन नदी में जब ये स्नान करते हैं तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, उनको आलिंगन देते हैं। तो उसके पश्चात जब बड़े हो जाते हैं तो स्वप्न में उनको आदेश देते चैतन्य महाप्रभु कि भाई आप वृंदावन की ओर जाओ, और अपने गुरु लोकनाथ स्वामी से दीक्षा ग्रहण करो, अनुग्रह ग्रहण करो, तो तुरंत ये घर छोड़ देते हैं और वृंदावन में पैदल चले जाते हैं। उस समय उनके छोटे भाई जो है संतोष दत्त, उनको राज में बिठाया जाता है राजा के रूप में। वो बड़ा भक्त था भगवान का, गृहस्थी था। तो वृंदावन में जो आते हैं तो उस समय लोकनाथ जी गोस्वामी जो थे, वो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी दो बड़े संत थे, और वो उनके पहले वृंदावन में आए हुए थे। तब वृंदावन जो है पूर्णतः लुप्त हो चुका था, मतलब जितने भी स्थान थे सब जंगल हो गया था, उधर कोई पवित्र स्थान प्रकट नहीं था, सब अप्रकट हो गया था। भगवान की लीला है, भगवान कभी धाम को प्रकट करते हैं, कभी लुप्त कर देते हैं। तो लोकनाथ जी महाराज और भूगर्भ गोस्वामी सब वृंदावन के वनों में घूमते थे, रोते हुए पुकारते हुए विरह में घूमते थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो खदीर वन है वहाँ पर लोकनाथ जी महाराज विराजमान थे, भजन करते थे वहाँ पर। उनको वहाँ किशोरी कुंड से हाथ में उनके राधा विनोद जी के विग्रह प्राप्त हुए थे, ऐसे ही कुंड में से प्रकट हुए, उनके हाथ में आए और हंस पड़े। जैसे नाम पड़ा, क्या पड़ा उनका? राधा विनोद। बोले मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, बोले जो तुमको भिक्षा मिलेगी वही खिलाना हमको। तो एक झोली बनाते हैं और गले में ठाकुर जी को रखकर फिर घूमने लगते हैं। नरोत्तम जी वहाँ पर पहुँचते हैं, उनको ढूंढे ढूंढे और कहते हैं कि मैं आपके दीक्षा का अभिलाषी हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं तो किसी होश में नहीं हूँ, ना किसी दीक्षा देने के योग्य हूँ, और तुम तो राजकुमार हो, तुम तो राजा होने के योग्य हो, और तुम्हें तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन दिया है, तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम को स्थापित किया है, तुम्हारे स्वप्न में आकर उनको आदेश दिया है, मैं उनके विरह में तड़प रहा हूं, और तुम्हें भगवान का स्वयं भेंट और अनुग्रह प्राप्त है, तो तुम मेरे से दीक्षा लेने के कैसे हो सकते? मैं तो तुम्हारे गुरु बनने के योग्य नहीं हूं, ऐसा करके टाल देते। फिर दोबारा आते, फिर प्रणाम करते, नहीं महाराज दीक्षा चाहिए आपसे। तो कहते जाओ, एक साल में 1 करोड़ नाम जप करके आओ। आप गिनती करेंगे बाद में, घर जाकर गिनती करना, दिन में कितनी माला होती है। दिन भर जप करना पड़ेगा आपको, 24 घंटे, तब जाकर कहीं 1 साल में 1 करोड़ नाम जप होगा। बोले इम्पॉसिबल चीज है, कैसे हो सकता है, इसलिए बोल दिया उन्होंने। लेकिन 1 साल के बाद लौटे, बोला कि 1 करोड़ जप पूरा हो गया है। तब भी मना कर देते कि नहीं, मैं इस अवस्था में नहीं हूँ, मैं किसी को शिक्षा देने के योग्य में नहीं हूँ, मेरी ये अवस्था नहीं कि मैं किसी को ट्रेनिंग दूँ, क्योंकि शिष्य लेना मतलब उसको शासन सिखाना, भक्ति का सब उसके ट्रेनिंग देना, उसको शास्त्र अर्थ करना उसके साथ में, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। फिर मना कर देते हैं। इतनी बार टालने के पश्चात भी इनका निश्चय जो है वो नष्ट नहीं होता है। और लोकनाथ जी महाराज इतने विरक्त थे कि इनकी सेवा की भी मांग कर रहे थे, वो कुछ सेवा दो, तो सेवा कुछ है ही नहीं उनके जीवन में। जो साधु व्यक्ति होता है, विरक्त व्यक्ति होता है, उसके जीवन में कुछ सेवा रहती नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ जरूरत नहीं पड़ती उनको, इतने विरक्त रहते हो तो कोई सेवा प्राप्त नहीं, ना भोजन बनाने की सेवा प्राप्त है तो भिक्षा मांग के खाते हैं, जो भी रुकी सुखी मिलती है वो खाते हैं। एक कोपिन वस्त्र पहनते हैं तो कोई वस्त्र की सेवा भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कहीं भी सो जाते हैं तो कोई शयन करने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं व्यवस्था कर सकते। लेकिन जो सेवायत होता है ना, सेवा करने वाला, जिसको सेवा करने का निश्चय होता है, वो कहीं ना कहीं सेवा ढूंढ निकलता है। तो उनने क्या किया, सवेरे के समय, भोर के समय, अंधेरे में उन लोकनाथ जी महाराज शौच करने जाया करते थे जंगल में। तो वहां पर उनके शौच की जगह कुछ निश्चित थी ऐसे, तो वहां पर वो अपने हाथ से उनका शौच साफ करते थे और पूरा मिट्टी डाल के वहां पर शौच के लिए जल रखते थे और जाके झाड़ी में छुपते थे। और फिर लोकनाथ जी महाराज आते थे, शौच करते थे, अरे देखते अरे इतनी साफ जगह जंगल में। एक दिन देखा, दो दिन देखा, कौन करता है, सब पानी रखा हुआ है, जिस जगह शौच किया वो जगह बिल्कुल साफ है, वह नई साफ मिट्टी है। तो यदि शौच का बहाना करके खुद जाकर झाड़ी में छुप जाते हैं, तो देखते हैं कि आंखों में आंसू लेकर नरोत्तम जी उनका शौच की जगह साफ कर रहे हैं, प्रेम से, हृदय से, आंखों में आनंद के अश्रु बहाते हुए साफ कर रहे हैं। तो जाके उन पर झपट पड़ते हैं, नरोत्तम तुम क्यों कर रहे हो ऐसे, तुम राजपुत्र हो, तुम ज्ञानी हो, तुम महाप्रभु का दर्शन प्राप्त कर चुके हो, तुम्हें उन्होंने आलिंगन दिया है, तुम पर प्रेम, कृष्ण प्रेम का अनुग्रह किया है, तुम ऐसे क्यों करते हो, मुझ जैसे पतित और पावन, पतित और क्या कहते हैं उसको, फॉलन कंडीशन सोल का तुम क्यों इतनी घृण सेवा कर रहे हो। वो कहते हैं कि मेरे राजपुत्र होने का ये सब चीज का क्या मतलब है, जब तक मुझे गुरु की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है तब तक मेरे ये सब वर्णन का क्या अर्थ है, क्या लाभ है मुझे उसका, जब तक महाप्रभु चैतन्य ने जो आज्ञा दी है वो मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, तब तक मेरे जीवन का क्या अर्थ क्या है, मेरा जीवन तुच्छ है। आप मुझे अनुग्रह कीजिए, आपके चरणों में स्वीकार कीजिए। उनकी ये तीव्रता, सेवा भाव, समर्पित भाव देखकर फिर लोकनाथ जी महाराज जो वैसे बाबा जी भाव में थे, वो भी उनका हृदय पिघल जाता है, तो गले लगाते हैं, बहुत देर तक आलिंगन देख के रोते हैं, फिर उनको दीक्षा देते हैं। तो कहते हैं कि दीक्षा मैं दे रहा हूँ लेकिन तुम्हें शिक्षा देने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए तुरंत आप जीव गोस्वामी के पास चले जाना और जीव गोस्वामी आपको आगे की शिक्षा देंगे। तो जीव गोस्वामी के पास पहुंच जाते हैं, और ये ऐसे कह मैंने सुना है कि वो बेहोश हो जाते हैं, फिर उनको उठाकर ले जाते हैं जीव गोस्वामी के गोद में, फिर होश आता है उनको जीव गोस्वामी के गोद में उनको फिर होश आता है। फिर उनके साथ में वहाँ पर श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद गोस्वामी, ये दो और भक्त वहाँ पर। श्यामानंद जी तो उनके गुरु जी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, राधा रानी ने स्वयं उनको तिलक कराया था अपने हाथ से, अपने पायल के। हाँ, हृदय चैतन्य इज गुरु ऑफ श्यामानंद गोस्वामी, ओके। तो हृदय चैतन्य महाराज थे जो गौरीदास पंडित के शिष्य थे, उधर कौन सी जगह थी वो, अंबिका कालना, वहाँ पर हृदय चैतन्य बड़ी लीला है, उसके शिष्य थे श्यामानंद जी, और आचार्य श्रीनिवास भी वहाँ पर थे। तो इन तीनों के एक साथ में आध्यात्मिक परवरिश हुई, और वहाँ से फिर एक बार जानवा देवी जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, उनका आदेश हुआ कि बंगाल से कुछ ग्रंथ भी नहीं मिल रहे हैं, और जी गोस्वामी ने अपने प्रयास से ब्रज में सबसे विश्व का श्रेष्ठ जो लाइब्रेरी ग्रंथालय बनाया था, तो उन्होंने आदेश किया कि वहाँ से कुछ ग्रंथ आप भेज दो। तो उन्होंने बैलगाड़ी में भर के वो चले यात्रा में, और सबसे प्रसिद्ध कहानी है हाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, पुस्तक वितरण की सबसे सबसे विशेष कहानी। तो वान विष्णुपुर नाम की जगह पर पहुँचते हैं, तो वो चोरों का राज्य होता है वहाँ पर, चोरों का शिरोमणि राजा होता है वहाँ। उसके पास एक भविष्यवेत्ता होता है, वो बताता है, कुंडली डाल के देखता है समय का, होता ना वो प्रश्न कुंडली, कि तुम्हारे गांव में राज्य में एक बड़ा धन आया हुआ है, और वो तीन साधु उसको लेके जा रहे हैं। हाँ, तीन साधु जो है उसको लेके जा रहे हैं, और वो विश्व का सबसे बड़ा धन है, उसको आप लूट लो। तो ये अपने कुशल चोरों को भेजता है, और ये जो पुस्तक का जो ग्रंथ का जो बड़ा बक्सा है उसको लूट लेते हैं। रात को जब सोए रहते हैं ये श्रीनिवास और श्यामानंद और नरोत्तम दास ठाकुर, तो ये सुबह उठते तो ग्रंथ गायब। तो उनके नेता होते हैं आचार्य श्रीनिवास, तो वो कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है, आप तो सहायता करने आए थे, इसलिए आप अपने अपने सेवा में चले जाओ और मैं फिर इसको ढूंढता हूँ। तो एक उसकी एक लंबी कहानी है कैसे उनको ग्रंथ वापस मिले, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर उस समय खेतुरी ग्राम लौट के चले गए, और नरोत्तम दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के अंतर्दान होने के पश्चात एक पहला सबसे पहला गौर पूर्णिमा का महोत्सव आयोजित किया था। ये बड़ी लंबी 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 कहानी है, हम तुमसे बता रहे हैं आपको। तो ये चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिवस के ऊपर जो गौर पूर्णिमा उत्सव नरोत्तम दास ठाकुर ने आयोजित किया, उस उत्सव में जितने भी गौड़िया वैष्णव थे विश्व के सब एकत्र हुए थे, साक्षात जानवा देवी भी वहां पर थी जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है। नित्यानंद प्रभु अंतर्दान हो चुके हैं, महाप्रभु भी अंतर्दान हो चुके हैं, लेकिन जब गौर पूर्णिमा का भोग लगता है, ठाकुर जी का अभिषेक होता है, उसके बाद जो दिव्य कीर्तन आरंभ होता है, उस दिव्य कीर्तन के आनंद के रस में नृत्य के अंदर स्वयं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हो जाते हैं, और सबके बीच में सबको दर्शन देते हुए नृत्य करते हैं। ऐसा बहुत अनोखा दिव्य अनुभव वहां प्राप्त होता है। तो आज भी खेतुरी ग्राम का गौर पूर्णिमा महोत्सव जो है वो बहुत फेमस है, वहीं से आरंभ हुआ था, और नरोत्तम ठाकुर ने अपने गांव में अपने भाई राजा संतोष दत्त के नेतृत्व में उसके सहायता से इस दिव्य गौर पूर्णिमा का आयोजन किया था। और इसके बाद में एक और लीला होती है वहां पर, एक बड़ा चावल का गोदाम था, और उस चावल के गोदाम में बहुत सारे सर्प थे, नाग थे, नाग कोबरा नाग थे, और बहुत लोग जानते थे कि इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण और कीमती धन जो है वो छुपा हुआ है। लेकिन कोई भी उस गुफा के पास जाने का प्रयास करते थे, गोदाम के पास, तो वो नाग जो है करके उस पर हमला करते थे। इसलिए कोई वहां पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजा, राजा के सैनिक कोई वहां पहुंच नहीं पाता था। नरोत्तम दास जी को एक खबर मालूम पड़ी, तो वह कहे मैं जाऊंगा उसके अंदर और उस धन को उपलब्ध कराऊंगा। तो जैसे ही नरोत्तम जी उस गुफा के पास जाते हैं, उस गोदाम के पास, उनके केवल आने से ही सारे नाग उस गुफा को छोड़कर, गोदाम को छोड़कर चले जाते हैं। बिना आवाज किए वे शांति से फन न उठाते हुए गुफा के बाहर चले जाते हैं और नरोत्तम जी स्वयं अकेले उसमें प्रवेश करते हैं। बड़ा दिव्य प्रकाश था उसके अंदर, उस चावल के गोदाम में बड़ा दिव्य प्रकाश था। तो उस चावल को अलग करके वो 5 ठाकुर जी के विग्रह निकालते हैं। तो जो भौतिक लोग सोचते हैं ना कि बहुत बड़ा धन है, तो सोचा कि कोई सोने की नाणी होगी, कोई मोहरे होंगी सोने की, या कोई और कुछ हीरे की गोदाम होगा उसके अंदर। नहीं, उसके अंदर ठाकुर जी के विग्रह थे। हाँ, तो 5 विग्रह जो इतने सालों से लुप्त थे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही जाने की, नरोत्तम दास ठाकुर जो है अपनी शुद्धि जो होते हैं, हृदय की शुद्धि, प्यूरिटी, उसके आधार पर, उसके बल पर वहां पर प्रवेश करते हैं और ठाकुर जी के 5 विग्रह प्रकट करते हैं। उसमें से 2 विग्रह जो है अभी वृंदावन धाम में, आगे 3 कहां है मुझे पता नहीं है, मैं पता करूंगा, बताऊंगा आपको। 1 विग्रह जो है राधा ब्रजमोहन, जो मैंने बताया पहले आपको, गोपी उद्धव मिलन स्थली जो है वहां पर, उसके सामने उसका मंदिर है। उस मंदिर में नरोत्तम दास ठाकुर की पहनी हुई हरिनाम चादर है। हाँ, इतनी जीर्ण है कि अगर हाथ लगेंगे तो पाउडर हो जाएगी, लेकिन वो बहुत संभाल के रखी हुई है, ऐसी चादर है हरिनाम चादर। उनका पढ़ा हुआ भागवत जो ग्रंथ है वो भी संभाल के रखा हुआ है। उनके द्वारा पूजित जो शालिग्राम शिला है वो भी वहां पर विराजमान है, और राधा ब्रजमोहन जैसे शालिग्राम शिला जैसे इनका रंग है वो भी वहां विराजमान है। ये सब आपको मंदिर में जाएंगे कभी तो आपको पुजारी दिखाते हैं निकाल के, उनका भागवत, उनकी चादर, उनके द्वारा पूजित शालिग्राम सेवा, शालिग्राम शिला दर्शन कराते हैं। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर, और दूसरी जो विग्रह है वो श्री चैतन्य महाप्रभु विग्रह है। वो ऐसे दारू मतलब लकड़ी के बने हुए हैं और ऐसे खड़े हैं, और वो जो गोकुलानंद जी का मंदिर है जिसमें हम लोग जाएंगे यात्रा में एक दिन, उस मंदिर में 5 विग्रह है। एक गोकुलानंद जी स्वयं है, एक शिला है जो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम से भेंट की थी अपने अंगूठे का निशान बनाकर, वो है। फिर राधा विजय गोविंद है जो स्वयं गोविंद जी ने भागवत पर भाष्य किया था बलदेव विद्याभूषण के लिए, वो विग्रह वहां विराजमान है। और राधा विनोद जी जो लोकनाथ गोस्वामी के पूजित विग्रह हैं वो भी वहां विराजमान है, और नरोत्तम दास ठाकुर के श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान। इस तरह से उनके जीवन की कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, लेकिन कायस्थ होने की वजह से उनको बहुत निंदा सहन करनी पड़ी। देखो ऐसा है ना, ब्राह्मण वृंद जो है उनके पास जन्म से कोई अधिकार है पूजा के और पौरोहित्य करने के, दक्षिणा लेने के, शास्त्र पढ़ने के, यज्ञ करने के, तक सब कुछ अधिकार है। लेकिन भगवान जो है वो कभी भी जन्म से किसी को पहचानते नहीं है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमय दिव्यम। हाँ, वो कहते हैं, ये भी कहते हैं कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशम, कि मैंने जो ये 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए हैं वो जन्म से नहीं बनाए हैं, गुण और कर्म से बनाए हैं। और जन्म से तो वो कायस्थ थे, लेकिन गुण और कर्म से तो बड़े श्रेष्ठ थे, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वैष्णव होता है। लेकिन फिर ब्राह्मण वृंद से उनको बहुत कष्ट हुआ कि आप ब्राह्मण नहीं हो फिर भी आप दीक्षा दे रहे हो, आपको ये अधिकार नहीं है फिर भी आप ये कर रहे हो। तो एक दिन जब वो पद्मा नदी के किनारे स्नान करने गए, दोबारा एक बार कई बार गए, उस समय सभी ब्राह्मण वृंदों के आंखों के सामने, हजारों ब्राह्मण वृंद वहां जमा हुए थे, उनके आंखों के सामने सुनहरे रंग का यज्ञोपवीत उनके शरीर पर प्रकट हो गया ठाकुर जी कृपा से, प्रकाशमान जाज्वल्यमान तेज पुंज ब्राह्मण का जो यज्ञोपवीत होता है उनके शरीर पर प्रकट हो गया। जैसे प्रकट हो गया सब ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी भी लीला करते हैं, बताते हैं कि मेरा भक्त कौन है। भक्त तो बहुत, जैसे वो कहते हैं ना मराठी में कहावत है कि टाकी से घाव सुसलेश देवपण एक नहीं, पत्थर को जब तक हजारों करोड़ों बार खिले के घाव नहीं पड़ते हैं तब तक उसको लोग पूजा नहीं करते मूर्ति समझ के, तब पर ठाकुर जी उसमें आविर्भाव नहीं करते अपना। उस तरह से संतों को भी संत बनना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत निंदा, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है, मन की, तन की, भावना की और बुद्धि की और शरीर की बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। फिर जाकर जैसे सोना आगे में जाता है तो वो सोना जो है और प्रकाशमान हो जाता है आग के स्पर्श से। लेकिन आग का जो आँच है वो सोने को सहन करना पड़ता है, तब जाकर सोने का स्वर्णपन जो है वो दुनिया के सामने प्रकट हो जाता है। उस तरह से भगवान ने बहुत सारा कष्ट उनको प्राप्त हुआ नरोत्तमदास ठाकुर को, लेकिन उसके आखिर में सभी ब्राह्मण वंद ने उनको स्वीकार किया आचार्य के रूप में, और खेतुर ग्राम के सभी ब्राह्मण सभी लोग उनके शिष्य बने। राजपुत्र तो थे ही उनका परिवार, लेकिन बाकी जो ब्राह्मण वंद थे वो सब उनके शिष्य बने। और उनकी जो तिरुभाव लीला है वो बहुत अद्भुत है। आमतौर पर जब तिरुभाव के संत का होता है तो उनके शरीर को समाधि में रखा जाता है मंत्र के साथ में, किसी और सन्यासी की सहायता से सन्यास मंत्र लिखते हैं उनके अंदर, समाधि मंत्र लिखते हैं शरीर पे, समाधि बनाई जाती है, तुलसी रखी जाती है, इस तरह से समाधि बनती है। और वहाँ के पुष्प जो है वो कहीं और जाकर बसाते हैं तो उसको पुष्प समाधि कहते हैं। लेकिन इनका जो तिरुभाव हुआ वो बहुत विचित्र हुआ। जब तिरुभाव का समय आया वे पद्मा नदी में गए और अपने शिष्यों से कहा इस जल से मुझे स्नान कराना। शिष्यों ने उनको पता नहीं क्या है ये लीला, वो तो आदेश के अनुसार स्नान कराने लगे गुरुजी को। जैसे वो नदी का जल लेकर इनके ऊपर डालने लगे इनका शरीर मानो उस जल के साथ में धीरे धीरे नदी में पिघलने लगा। जैसे हम लोग उसमें बहुत कचरा होगा शरीर पे, साबुन लगाएंगे तो साबुन के साथ में कचरा भी निकल जाएगा ना अपना, उस तरह से इनका शरीर ही उस जल के साथ में पिघल कर कम 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 होने लगा। और जब जल डालते गए तो गुरु महाराज पूर्ण लिप्त हो गए जल के अंदर। रत्नदास ठाकुर जो है उनका शरीर पूरे पद्मा नदी में विलीन हो गया। तो देखिए शिष्यों की क्या अवस्था हो गई होगी। हाँ, गुरु महाराज को स्नान करा रहे, गुरु महाराज ही अंतर्धान हो रहे आंखों के सामने। इस तरह से दिव्य रीति से नरोत्तमदास ठाकुर जी का तिरुभाव हुआ है। तो ऐसे महान संत लोगों संत का आज जन्मदिवस है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों में इनका विशेष स्थान है, क्योंकि इन्होंने इनके कवि थे, बड़े श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने इनके कई ग्रंथ हैं कविता के भजन के, जो आज भी गौड़ीय संप्रदाय के लिए एक क्या कहते हैं उसको दीपक के समान है, प्रकाशमान स्रोत के समान है। उन्होंने बताए हुए जो सिद्धांत हैं, जो साक्षात्कार किए हुए भाव हैं उनके, वो उनके भजन में प्रकट है। और उसके माध्यम से आज भी हम 500 साल के पश्चात भी उनके भजन से अपनी भक्ति में प्रेरणा लेते हैं। वो हमारे लिए मार्गदर्शक तत्व की तरह, एक सूरज के प्रकाश की तरह हमारे लिए आज भी प्रकाशित है हमारे लिए। एक ग्रंथ है प्रार्थना, जिसमें से कई भजन हम नियमित रूप से गाते हैं, बड़े फेमस भजन जो हम हमेशा गाते रहते हैं, उसमें कई सारे भजन ठाकुर नरोत्तम दास ने लिखे हुए हैं। तो हम सब लोग अपनी जगह पर बैठकर ठाकुर नरोत्तम दास महाशय को हृदय से दंडवत प्रणाम करते हैं और ये याचना करते हैं कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे, हमारा भाव उनकी तरह बना रहे, हम सबके लिए जो जीवन में वांछित है भगवान के चरण कमल उनकी भक्ति प्राप्त हो, ये नरोत्तम दास से हम प्रार्थना करेंगे। और संक्षिप्त रूप में हमारे कैंप में उनका लीला का क्या संबंध है और क्या कनेक्शन है ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो सेवा भाव गुरु जी का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए नरोत्तम दास ने दिखाया वो सब हमारे हृदय में प्रकट होना चाहिए। गुरु महाराज के बार बार रिजेक्ट होने के पश्चात भी जिनको सेवा करनी होती है वो सेवा ढूंढ के निकालते हैं। मतलब क्या प्रभु जी, कब काम हो गया अभी, क्या कुछ काम नहीं, चलो जरा घूम के आओ क्या, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन जिनको सेवा करनी होती है उनके लिए अनंत सेवा के माध्यम और मौका और अवसर यहाँ उपलब्ध है। बरसाना कैंप में और 1000 लोग भी आ जाएंगे सेवा करने के लिए, उनको भी सेवा मिलेगी, क्योंकि राधा रानी का सेवा का धाम है। हम सबको यहाँ पर आकर सेवा करने के लिए हम लोग आते हैं। हाँ, कोई अंतस्थ हेतु नहीं होना चाहिए, ऊपर का हेतु है सेवा करने के लिए एनरोल किया गया है, और हृदय में कुछ और हेतु है कि भाई मैं यहाँ घूमूंगा, यहाँ जाके दर्शन करूंगा, यहाँ पर मेरा कुछ प्रण पूरा करूंगा। हम सब लोग यहाँ पर केवल एक हेतु से आए हैं, वह है ब्रजवासियों को नेत्रदान करना, उनको संतुष्ट करना, इस हेतु से आए हैं। और वो हेतु छोड़कर अन्य कोई भी कार्य हमको मोहित नहीं करना चाहिए, हमारा मन जो है उसमें मोहित नहीं होना चाहिए किसी भी अन्य हेतु से, आध्यात्मिक ही हो भक्तिपूर्ण हो, उसमें ही आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि भक्ति का कार्य है, थोड़ी मैं कोई माया का कार्य कर रहा हूँ। फिर भी हमें जैसे अर्जुन को बताया गया तो उनको क्या दिखाई पड़ रहा है, बहुत लोगों ने बताया हमको पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं, पेड़ दिखाई पड़ रहा है, बादल दिखाई पड़ रहा है, पंछी उड़ रहा है, बहुत सारा चीज़ उसी दिशा में दिखाई पड़ रहा है उनको। लेकिन अर्जुन ने बोला कि मुझे उस पक्षी की बाई आंख दिखाई पड़ रही है, बस पक्षी भी नहीं बोला उन्होंने, बहुत लोगों ने पक्षी बोला, उन्होंने कहा कि मुझे केवल पक्षी की बाई आंख जो छेदनी है वो दिखाई पड़ रही है और मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है। वैसे सेवक को हमेशा अपनी सेवा दिखनी चाहिए बस, और सेवा के फल के रूप में क्या मिल रहा है, सेवा का विस्तार क्या, और कुछ नहीं, केवल सेवा उसको करनी है, और जो सेव्य है मतलब जिसकी सेवा करनी है उसकी प्रसन्नता ही उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। जिसकी सेवा करने आए हैं उसको प्रसन्न करना है, मतलब आपको वो सर्टिफिकेट मिल गया कि इतनी सेवा पूरी हो रही, और उसके बाद में अगर लड्डू मिल रहे हैं तो खा लो, रबड़ी मिल रही है तो वो भी खा लो, और दर्शन मिल रहा है दर्शन भी ले लो, हाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे प्रथम जो प्राधान्य है वो सेवा का है। हाँ पंछी भी बोल रहे हैं वही बात। यस यस बोल रहा है, ये सही है, ऐसे बोल रहा है। तो आप सबको आज के इस दिवस के उपलक्ष में मैं विनती करूंगा कि नरोत्तम दास ठाकुर की जो सेवा भाव है वो हम कुछ कुछ अंश में, हम लोग ये बिल्कुल ये बोल नहीं सकते कि हम उनका भाव ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम याचना जरूर कर सकते हैं कि आपका जो सेवा भाव है उसका एक कण मात्र भी हमारे हृदय में आ जाए तो हमारा जो तुच्छ जीवन है वो संपन्न हो सकता है, यशस्वी हो सकता है। और ऐसे कण कण की जो आविर्भाव हर एक के हृदय में होगा तो हमारा कैंप जो है वो भी सफल हो सकता है, और हमारा भी एक अंतस्थ हेतु है। हमने कहा अंतस्थ हेतु नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा भी अंतस्थ हेतु है, वो क्या है कि हम ब्रजवासियों को संतुष्ट करके प्रसन्न करके श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और ये कृपा लेकर अपने बम्बई जाकर भक्त समुदाय को हमारी जितनी सेवा है उसमें वो कृपा ले जाना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोग जो यहाँ बैठे हो वो कुछ सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन जो हजारों लाखों लोग बम्बई में बैठे हैं आपके गुरु भाई गुरु बहन समुदाय के भक्त लोग हैं वैष्णवजन हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ पर आए। जो नहीं आ पा रहे हैं आपका सेवा कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ पर आए। सब लोग नहीं आ पा रहे हैं, कुछ तो कुछ व्यस्त हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप यहाँ पर आए हो, उस भावना से आप सेवा करना, उन सब के लिए कृपा याचना करना, उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेवा करना, उनके प्रतिनिधि के रूप में ब्रजवासियों की संतुष्टि का प्रयत्न करना, और फिर उनके लिए ही उनके ही उपलक्ष्य में दर्शन करने को जाना और सब जगह उनके लिए प्रार्थना करना, तब आपको जाकर सही कृपा प्राप्त होगी धाम की। धाम में आने के पश्चात धाम में निवास, धाम का प्रसाद ग्रहण, धाम का जल ग्रहण रस ग्रहण और धाम के निवासियों की सेवा, उनकी प्रसन्नता करने से ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, और उनकी कृपा प्राप्त करने के पश्चात जब हम दर्शन करने जाते हैं तो हमारे दर्शन जो है उसका अनोखा आनंद हमको प्राप्त होता है। रमेश बाबा जी महाराज ने बताया जिस दिन कोई व्यक्ति यहां पर आकर श्री जी के भक्त की सेवा करता है जिससे वो प्रसन्न हो जाता है, उसी दिन श्री जी आपका जो सिफारिश श्री कृष्ण से करते, वो दिन समाप्त होने के पहले श्री कृष्ण के आपकी सिफारिश करते कि बहुत बड़ा अच्छा भक्त है, उससे बढ़िया सेवा की है। हाँ आप सबको मौका है, जब मैं बोलता हूं कि पुकारो, क्योंकि आप सबको वो मौका है कि उसी दिन आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं उनको पुकार कर या उनकी सेवा करते हुए। तो हर रोज आपकी सिफारिश श्री जी भगवान से कर सकती है, ये मौका आपको उपलब्ध है। इसलिए अपने ध्यान को यहाँ वहाँ हिलने मत देना, ये हमारे जीवन का अनंत जन्मों के पुण्यों का ये फल है कि हम बरसाना में अभी कुछ दिन के लिए क्यों ना हो बैठे हुए हैं। हाँ ये धामवास कुछ छोटे समय के लिए क्यों ना हो हमको प्राप्त है, तो इसलिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। ये मन जो बड़ा चंचल होता है, अर्जुन ने भी कहा था कि इसको पकड़ना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी इसको काबू करना होगा। जब तक ये काबू नहीं होगा तब तक हम भगवान के चरणों में अपनी समर्पण भावना को व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए जितने घंटे जितने दिन जितने घंटे जितना मिनट और जितने सेकंड आपको यहाँ पर दिए गए हैं, हर एक सेकंड जो है अनंत जन्मों के पुण्य का फल है, ये समझ लीजिए। आपको शायद कई करोड़ सेकंड मिले होंगे, तो आप कुछ सेकंड ऐसे बढ़ेंगे चलो जाने दो थोड़ा टाइम पास भी कर लेंगे, बहुत सारे सेकंड मिले होंगे, हाँ लेकिन हर एक सेकंड जो है हर एक निमेश जो है हर एक जो लव है एक सेकंड का 12वां हिस्सा है, वो भी यहाँ पर आपको जीवन के परमोच्च प्राप्ति कराने के लिए समर्थ है, ये आप समझ ले लो। यहाँ का समय मनुष्य जीवन का बरसाने का समय जो है बड़ा बड़ा अमूल्य और कीमती है। इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करूँगा, यहाँ का कण कण का जो आपका संग है और कण कण का जो निवास है उसका पूरा लाभ उठाना आध्यात्मिक दृष्टि से, हाँ तो भगवान आप पर अनंत कृपा करेंगे। और यहाँ के कुछ समय का जो संघ है और वास है, वो आगे आने वाले जन्म जन्मांतर तक आपको सहायता करेगा। इतनी शक्ति है इस वास में, इस रज में इतनी शक्ति है, जो सब देवता जो है अपने लाखों करोड़ों सालों के जन्म के अंदर भी एक यहाँ का रज का कर्ण का प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं। और हम लोग सब आराम से यहाँ पर बैठे हैं, हाँ, यहाँ की हवा, यहाँ का जल सबका लाभ रहे हैं। यहाँ की हवा मतलब आपको आलिंगन भगवान दे रहे हैं, यहाँ का जल के माध्यम से आपको सब रसों का सार जो है उसका पान करा रहे हैं, क्योंकि रसों का उगम यहाँ पर हुआ है। राधा रानी यहाँ पर अपने चरणों से उनके नूपुर जब आवाज निकलती है तो सब रसों का उगम वहां से होता है, उस जगह पर हम आए भगवान के एकदम अंतरंग स्थान पर आए। और हजारों भक्त यहाँ पर आते दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आप जैसे कुछ भाग्यवान जीवों को यहाँ की सेवा प्राप्त होती है, बाकी लोग दर्शन करके प्रसाद लेकर चले जाते हैं। आप लोगों को दर्शन प्रसाद मिल रहा है, साथ साथ में सेवा मिल रही है, वो भी निज सेवा कहते हैं उसको, अपने प्रिय भक्तों की सेवा राधा रानी आपको दे रही है। इसलिए अपने भाग्य को पहचानो और उस तरह से अमल करो ताकि थोड़े से यहाँ के संग से आपका जीवन का बड़ा उद्धार हो सकता है। इतनी शक्ति इस संग में है, इसलिए भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा, श्रीमती राधा रानी श्री जी महारानी के चरणों में प्रार्थना करूंगा। आज सुबह भी मैंने मंगला में सबके लिए प्रार्थना किया कि सबको ऐसी सन्मति दो जिससे कितने भी क्षण यहाँ प्राप्त हुए हैं उससे जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त इनको करा दीजिए। ब्रजवासियों को संतुष्ट करने की शक्ति, प्रामाणिक भावना, सेवा भाव सब इनको प्राप्त करा दीजिए, जिससे कि दिव्य चक्षु यज्ञ है वो हमारे लिए भी और उनके लिए भी सफल हो जाए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।